دستیاب، 12050 ایئرپورٹ روڈ، ایئرپورٹ مے فیلڈ روڈ کا انٹرسیکشن، 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633 9059653633
ਵਿੱਚੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
SNS Lawyers ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS Lawyers ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
ٹرک کا گھومتا پہیا کینیڈا کی معیشت کی ترقی کا ضامن۔ آپ کا ٹرک سڑکوں پر راج کرے اور کینیڈا کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ ٹرک مینول یا پھر آٹومیٹک، ٹرک کی بہترین سروس کے لیے کوئک ٹرک لیو تھرو آؤٹ انٹیریو، نو اپوائنٹمنٹ نیڈیڈ، ڈرائیو تھرو فیسلٹی، ون سٹاپ شاپ۔ اب تیسری لوکیشن ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان نیپنی۔ کوئک ٹرک لیو 519-622-0660 quicktrucklube.com।
آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا ریڈیو 770 AM۔ ہمارے پروگرام کو ٹورانٹو میں سننے کے لیے ڈائل کیجیے 647-872-4900، مونٹریال 514-907-6288۔ اس کے علاوہ کیلگری، وینکوور، ایڈمنٹن اور ریجائنا کے نمبرز آپ eawaz.com کی ویب سائٹ پر جا کے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری لائیو 24 گھنٹے کی نشریات کے لیے وزٹ کیجیے eawaz.com، لائک کریں فیس بک پیج eawaz، ڈاؤن لوڈ کریں فری eawaz آفیشیل ایپ۔ ریڈیو 770 AM، وائس آف کمیونٹی۔ فار مور ڈیٹیلز وزٹ eawaz.com۔ اب مارگیج لینا اور بھی آسان، سینٹم فیوچر مارگیج گروپ کے کاکب جاوید کو کال کریں۔ پرائیویٹ مارگیج فار اینی پرپزز، کمرشل مارگیج، انڈسٹریل مارگیج، فارم اینڈ ہابی فارم، ویری کمپیریبل ریٹس فار فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ مارگیج، نیو کمرز ٹو کینیڈا، فرسٹ ٹائم بائرز، سیلف امپلائڈ، ری فائنینسنگ، ڈیٹ کنسولیڈیشن، اسسٹ ان ریئل اسٹیٹ۔ He will make mortgage easy for you. Kokab Javed, Mortgage Agent, 416-454-6065.
اگر آپ کو پرسنل آٹو یا ہوم انشورنس چاہیے تو بالکل نہ گھبرائیں، کال کریں آل اسٹیٹ کے محمد صدیقی کو، جن کے پاس بہت سال کا انشورنس اور سیل ایکسپیرینس ہے۔ کال فار فری کوٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ ہاؤ یو کین سیو اپ ٹو 30% آن آٹو انشورنس۔ کال محمد صدیقی 647-203-5546 647-203-5546۔
Ayyo, who is the Stager?
Complete home furniture and appliances, latest style, color, fabric, golden ya phir silver, modern, traditional, contemporary furniture and decor. Complete home furniture and appliances. Must see, must visit designer's collection and affordable price.
Seeing is believing. Complete home furniture and appliances.
No cost, free advice. 547 Steeles Avenue East in Brampton. 905-244-4663. 244-4663.
CIBC Global Money Transfer کے ساتھ اپنے پریوار کو زیادہ سے زیادہ خوشیاں دیں۔ CIBC Global Money Transfer کی $0 ٹرانسفر فیس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے پریوار تک پہنچائیں اور بھی زیادہ پیسے۔ آج ہی CIBC.com/globaltransfer پر جائیں اور پرومو کوڈ GMT50 کے ساتھ اپنے پہلے ٹرانسفر پر واپس پائیں $50۔ شرطیں اور CIBC فورن ایکسچینج ریٹس لاگو۔
سونا کر لیا ہوں، اپلائنسز بھی سٹینلیس سٹیل دے ہی چاہیے دے۔
ہاں جی، سٹینلیس سٹیل دے اپلائنسز ملن گے تانو برامٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز تے، جسے فریج، سٹوو، ڈش واشر، تھری پیس کچن بنڈل، اس تو علاوہ فرنٹ لوڈ واشر اینڈ ڈرائر، انرجی سیور، انرجی سٹار، تے ٹی وی سیکشن اچ سونی، سیمسنگ، پیناسونک، شارپ، ہر سائز تے ہر برانڈ دا ٹی وی ود دی لوئسٹ پرائسز ان دا ٹاؤن، صرف برامٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز تے۔ برامٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز، 801 Bovet Drive West Brampton या कॉल करो 905-450-2828 905-450-2828।
शीला के हस्बैंड को देखो, सारा दिन एक्टिव रहते हैं, दिन भर ऑफिस में काम और रात को शीला के साथ हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। और एक हमारे नवाब साहब हैं, ऑलवेज लेजी।
एक्सक्यूज मी मैडम, आपके हस्बैंड को चाहिए SBM का रेजुना जो एलिमिनेट करता है टॉक्सिंस एंड इम्प्योरिटीज बिना किसी भी साइड इफेक्ट के। फॉर मोर इन्फो कॉल अशोक ऑफ SBM आयुर कैनेडा 905-790-7734 और विजिट एट एयरपोर्ट एंड सैंडलवुड कॉर्नर प्लाजा यूनिट 15 ब्रैम्पटन। रेजुना अब रोजाना।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
जी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे फार्म मुज़फ़्फ़र आप तमाम को खुश आमदेद कहना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम की रूपरेखा तो आपके साथ शेयर करती चलूँ। अभी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ उमर अलगबरा साहब होंगे। उमर अलगबरा ने बेसिकली 5 बजे उन्होंने तशरीफ लाना था, मगर आपको पता ही है कि लंदन का जो वाकया हुआ है उस वाकये के बाद एक विजुअल है जहाँ पर उनको जाना है, इसलिए वो एनी मिनट उमर अलगबरा मेरे साथ होंगे। तकरीबन 5:25 पे हम आपको पाकिस्तान लेके जाएंगे और पाकिस्तान से हमारे साथ शामिल होंगे जनाब वसतुल्ला खान साहब। 5 बजे जनाब प्रदीप जी सनलाइफ से हमारे साथ तशरीफ लाएंगे। 6 बजे के बाद हम न्यूज़ इन डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। आज के प्रोग्राम में जैसे मैंने अभी आप लोगों के लिए मैसेज छोड़ा, फ्रांस के सदर मिस्टर मैक्रों अपने फ्रांस के दौरे पे हैं और माजरत की ख्वाहिश करूं, एक जगह पे उन्होंने बढ़ के लोगों तक जाना चाहा। आप देखिए उन्होंने हाथ इस तरह से बुलंद किया, हम ये वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मजमे में से एक शख्स ने फ्रांस के सदर मैक्रों उनके चेहरे के ऊपर थप्पड़ रसीद किया। यकीनन इसको बुरे तरीके से कंडेम किया जा रहा है, दिस इज नॉट द राइट थिंग। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं। अब ये शख्स कौन है? आप एक तरफ मैं अगर ऑन्टेरियो के वाक्य के लिए अपना एहतजाज बुलंद करना चाह रही हूँ तो ये शख्स कौन है, क्योंकि उनकी उसकी ग्रीन शर्ट को खास तौर पे हाईलाइट किया है। यकीनन इस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है, ये खबर हमारे तक आगे पहुँचती है, हम तफसील से इसका आगे जिक्र करेंगे। ये तो फ्रांस के सदर के बारे में बात हुई। एक और चीज़ जिसको मैं शेयर करना चाहती हूँ आज के प्रोग्राम में, FBI और ऑस्ट्रेलिया हुक्काम ने मिलकर एक ऐप तैयार की थी। इसके नतीजे में पूरी दुनिया में से, जिसमें से यूरोप में से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 800 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये बाकायदा एक खास ऐप को तरतीब दिया गया था और पुलिस के जरिए मुजरमान तक पहुंचाई गई थी, उनके आला लीडर्स तक पहुंचाई गई थी और फिर इनकी तमाम गुफ्तगू को एक अरसे तक रिकॉर्ड किया जाने लगा। अल्टीमेटली इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ये इनोम नामी एक ऐप है, एक्चुअली इस इनोम ऐप को फाल बनाने के लिए ये जो मुजरम मुख्तलिफ ऐप्स को इस्तेमाल करते थे टू कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर, और ये कम्युनिकेशन के लिए उन दो ऐप्स को उन्होंने ख़त्म किया था। और उसके बाद ये ऐप जो है, इस ऐप के लिए टेलीफोन एक खास थे जो कि बाकायदा इन लोगों तक पहुंचाए गए और उसके बाद इनकी तमाम गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज से तकरीबन 800 के करीब ऑल टुगेदर लोगों को अरेस्ट भी कर दिया गया। एक शख्स जो कि सरगना अपने आप को तसव्वुर करता है, वो कहते हैं कि वो चला गया है टर्की में, मगर कहा गया है कि उसको चाहिए कि वो अपने आप को खुद से पुलिस के और सुपुर्द कर दें, इन लोगों के सुपुर्द कर दें। बहरहाल वो कहते हैं कि इसमें बेशुमार गन्स को पकड़ा गया है, इसमें ड्रग्स को पकड़ा गया है और इसको ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड कहा जाता है। आपको याद होगा ट्रोजन हॉर्स का इस्तेमाल, और ट्रोजन हॉर्स का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था। ये अगर हिस्ट्री की तरफ जाएं तो यकीनन उस वॉर का जिक्र है जिसमें ये ट्रोजन हॉर्स तोहफे में दिया गया था, और ये बहुत बड़ा घोड़ा, लकड़ी का काट का घोड़ा था जिसके बीच में फौजें छुपी हुई थी, और जो फतह करने वाली कौम थी अल्टीमेटली उस ट्रोजन हॉर्स में से निकली हुई फौजों ने उनकी शिकस्त में बदल कर दिया था। तो अब इसको ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड का नाम दिया गया था। अल्टीमेटली ये इनोम नामी ऐप है जिसके जरिए इन्होंने इंटरनेशनली 800 کے قریب لوگوں کو اریسٹ کیا. آج کے پروگرام میں اس کا بھی ذکر کریں گے. کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اور جو ہمارا واقعہ ہے یقیناً میں اس کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں. ہمارے پرائم منسٹر نے آج گلوبل اینڈ میل کی یہ نیوز بھی ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں آل دو اٹ ٹک ٹو ڈیز, کیونکہ سنڈے کی شام کو 8:45 پہ واقعہ پیش آیا تھا, آل دو اٹ ٹک ٹو ڈیز, بٹ الٹیمیٹلی جو کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے مسلمان خاندان کے 4 افراد کی ہلاکت کو دہشت گرد حملہ قرار دیا, جنہیں ایک شخص جو کیا تھا یہ 20 ایئرز اولڈ لڑکا تھا اور 20 سالہ ملزم. اس پہ یقیناً الٹیمیٹلی آج جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس فیملی کو مسلمان ہونے کے ناطے انہوں نے کیا تھا اور اس کو انہوں نے ٹیررسٹ اٹیک کا نام دے دیا. یہی آپ لوگوں کا تھا کہ یقیناً اگر کوئی بھی شخص غلط حرکت کرتا ہے تو اس کو اسی نام سے منسوب کیا جانا چاہیے. آج اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ٹویٹ آپ کو دکھا سکیں. ایک پیغام جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور ہمارے جگمیت سنگھ صاحب جو کہ این ڈی پی کے لیڈر ہیں اور کنزرویٹو کے لیڈر نے جو پیغام دیا, سماعت فرمائیے.
This were taken in a brutal, cowardly and brazen act of violence. This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. They were all targeted because of their Muslim faith. This is happening here in Canada. And it has to stop. Mr. Speaker, we stand with the people of London and with Muslim communities across the country. We're going to continue to fund initiatives like the Security Infrastructure Program to help protect communities at risk and their schools and places of worship. We'll continue to fight hate online and offline, which includes taking even more action to dismantle far-right hate groups like we did with the Proud Boys by adding them to Canada's terror listing. And we'll continue doing everything we can to keep communities safe.
Because there's a 9-year-old boy lying in a hospital bed, we have to strive to learn and be better. The Canada of his future needs to be better than the Canada of Sunday evening. He deserves a Canada where his family can go for a walk on a tranquil Sunday evening. He deserves a Canada where he can go to a mosque and not worry about his safety. He deserves a Canada where Muslim women of faith can wear a hijab without fear of being accosted or harassed in public. Over the last year, we've become more separated from one another. Police services have warned of a dramatic increase in hate crime, violent extremism, Islamophobia, and other signs of intolerance from one part of our country to another. It feels like we're having conversations in grief and fighting intolerance more and more. And as hard as that is, it is important for us to shine light collectively to fight against the darkness.
And to think that a family going for a walk couldn't make it home. To think that that casual walk around the block in our neighborhood would be one's last. To think that you can't walk safely down your own street. And to think about what that means for a Muslim family right now. People are talking to their families and saying, you know what, maybe you shouldn't go for a walk. There are people literally thinking about whether they should walk out their front door in our country. But the reality is, this is our Canada. This is our Canada. Our Canada is a place where 215 little kids were found dead in unmarked graves. Our Canada is a place where you can't walk down the streets if you wear a hijab because you will be killed. This is our Canada. We can't deny it. We can't reject that because it does no one any help. The reality is our Canada is a place of racism, of violence, of genocide of Indigenous people, and our Canada is a place where Muslims aren't safe. They aren't. They aren't safe. Muslims are not safe in this country.
No, leaders ka Prime Minister of Canada, Janab Justin Trudeau sahab ka apne pegam dekha aur unhone isko just terrorist attack ka naam de diya. Leader of Opposition, Aaron O'Toole ka apne pegam suna. उन्होंने भी यकीनन बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया और दुख के वक्त में और गम के वक्त में ये दिलासे जरूर हुआ करते होते हैं. एनडीपी के लीडर जनाब जगमीत सिंह ने भी यकीनन तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया, उनका बहुत शुक्रिया. जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था, हम आपकी मुलाकात जनाब उमर अल गबरा के साथ करवाएंगे. उमर अल गबरा जनाब मेंबर पार्लियामेंट हैं और मिसेस सागा सेंटर से आपका ताल्लुक है. सबसे पहले तो आई डेफिनेटली थैंक हिम उमर अल गबरा. आई थैंक यू वेरी मच दैट यू ज्वाइंड अस ऑन द रेडियो. थैंक्स अ लॉट.
अस्सलाम वालेकुम शाजिया, इट्स गुड टू बी बैक विद यू ऑन योर शो.
This is Arifa Umar Al Gabra. The first time when you were elected, I remember this
yes,
is me who predicted that you will win, and I got the sweet box before your election results were out because I knew the way you were and the way community supported you that you will win. And I remember my brother was with you, and I predicted before time, and there was a program going on in a banquet hall where I got that sweet box. Anyways, thank you very much.
I will never forget that, Arifa. But I'm sorry, the name that was given to me, I thought my memory had faded and I got the names wrong. But I will never forget you and forget your words.
Thank you very much. You know what? You're a young man, and we need you. And of course, it's not you, but it's my memory. But of course, I have my affiliation with everybody. Now, Al Gabra, I know that our interview was scheduled for 5 o'clock, and I believe you have to go some vigil today at 5. Is that right?
That is correct. I will be heading to London, Ontario, to be with the community this evening for a vigil to honor and remember the Afzal family.
This is a very sad event, and it's just a coincidence that our interview was scheduled today, and we have to share this thing as well. Today, the Global News covered it that although in 2 days, but the government of our Prime Minister and everybody, they accepted that it was a terrorist attack and it was Islamophobic event that this young man, he killed 4 members of the same family. And my heart goes with the 9-year-old boy. The family, although, must be settled, but their parents can never come back. His parents can never come back. That is the saddest part. What would you say about this activity?
I have no words, Arifa. I really have no words. It feels, obviously, first, my condolences to the loved ones and the family of the Afzal family. No one expects this to happen to them when they go for a walk. And this also, you know, how often is it to find 3 generation of family members walk together? That they taken a walk together. You know, typically parents or grandparents have a hard time convincing their kids to go for a walk with them, but this family was together.
This is very sad.
It's heartbreaking. And let me just say that the Muslim community, it feels like the community has been grieving for not only days, but for weeks and for months and for years. You know, just last week with the discovery of the remains of the indigenous children, the Muslim community grieved.
You're right.
Few weeks before that, watching the images of what's happening in the Middle East, the Muslim community was grieving.
You're right.
Few weeks before that, you know, the story of Muhammad Aslam who got killed outside the IMO.
You're right.
Few weeks before that, it was Ijaz Chowdhury who was killed by police. Months before that, we had the Quebec mosque shooting. And in between, we had many incidents of harassment, physical harassments of hijabi women or individuals. We've had vandalism at mosques here in Toronto, in Mississauga, in Quebec, in other places. So there's no doubt that the Muslim community is been grieving for a very long time and is feeling a sense of isolation and worry. So let me just say that, you know, the entire country stands with the Muslim community today. I feel the outpouring of support and words of encouragement that I've been receiving from other members of parliament, ministers, community leaders. And I know that, you know, we need to remain united in the face of a small number of hate-motivated individuals, because this is the only way for us to pull through this. But I also know that faith, this is the time for faith. This is a time for family. This is a time for community. And while there's some work has been done, but I know there's still a lot more work that needs to be done.
Like people like yourself are there, and we definitely count on you. Now, Omar Al-Ghabra, I thank our leaders and that our Prime Minister, he acknowledged it. I'm very sorry for the young boy. As a Muslim, I believe that everybody has a time to go, but the child feels sorry for that, that he will never have somebody to say, call mama or baba. This is the saddest part. And anyways, thank you very much again. Now, my question to you today is that the air flights, the flights between Pakistan and Canada are closed. How many cases of COVID came from Pakistan? Because I am concerned, Umar Al-Ghabra, that my honorable leader, member parliament, my concern is that from Pakistan, I haven't seen so many people coming and bringing in fake reports. What was the reason? And the number of cases in India was far, far, far more than that. There was around 250,000 per day. So what was the reason that the flights from Pakistan was also closed once they closed this operation from India?
Yeah, thank you for giving me the opportunity to answer this question. I was also on your show, on your station,
yes,
a month ago, answering this question. And so let me just say that this was not an easy decision. This was a difficult decision, and it is part and parcel of our commitment to Canadians from the start of the pandemic to do whatever we can to protect the health and safety of Canadians.
Very right.
And you know, the decision was based on data that was provided to me through public health agency. So as you know, part of our border measures is that we test arrivals. We test arrivals twice, first day and day 10, and now we changed it to day 8. Mm-hmm. And the trend that Public Health Agency of Canada noticed is that the infection rate, the percentage of travelers coming from Pakistan, was actually the highest out of all direct flights from any other country, including higher than India. So while the situation in India is different than the situation in Pakistan on the ground, but what we saw, what Public Health Agency of Canada saw, is that the percentage rate were higher both for India, travelers coming from India, and travelers coming from Pakistan. In fact, travelers coming from Pakistan had a higher percentage than India.
Getting the infection.
The numbers, the absolute number of passengers were smaller than the number of travelers from India because there were less flights, but the percentage rate was concerning. So we made a decision to suspend temporarily these flights until things cool down, until the vaccination rates in Canada climb. So this was, as I said, a difficult but temporary decision. And let me just say, this was not the first time that we've done this. We had a flight suspension from the UK in January. We also had a voluntary suspension of flights that is still ongoing to the Caribbean and Mexico. So those were part and parcel of a package of measures. And I just want to say that it was not an easy decision, but it was the right thing to protect the health and safety of Canadians, including the health and safety of Indian and Pakistani Canadians.
You're very right. Not only Indian and Pakistani Canadians, all the Canadians living here. And of course, Canada is my priority at the moment. I never got this statistics what you told me, because I, even Shazia was looking at this and I myself looked at it. What number of percentage people coming from Pakistan and bringing the infection, but once you shared these numbers, that the number from coming from Pakistan was higher as compared to India, so of course it does make sense. And of course, being Canadian, my Canada must be safe and people should not travel with these infections.
Now, I think that is a good point, Arifa, is that, you know, we've been asking Canadians, pleading with Canadians to avoid non-essential travel,
right,
not only because of health and safety, but also because we knew that travel measures could change at any moment in time, not just Canadian travel measures, but the world travel measures. And we've seen other countries occasionally suspend flights to other countries. So, those measures are temporary. I am optimistic. The vaccination rates in Canada is growing. We are now number one in G20. And I want to thank all Canadians, including Pakistani Canadians, who've been rushing to get vaccinated when their turns come. That's fantastic. Supplies of vaccines are coming into the country by the millions every week. That's great news. Also, infection rate in Ontario is coming down. That's also great news. So I am really optimistic about the future. But I ask Canadians to continue to follow public health advice. And I also ask them to go get vaccinated whenever their turn comes up, including the second dose, whenever their turn comes up for the second dose.
Thank you, Honorable Minister, our Minister of Transportation, that is Umar Al-Ghabra. He mentioned that non-essential, and I believe even if I have to travel essential, and if I am a carrier, I must stop all the operations, because I am affecting all other people around me that can be my family member. Thank you very much. What do you think when this operation and these flights will resume?
I want to avoid speculating, because I don't want to say something and then ends up being inaccurate.
Yeah.
So we will review when this decision expires on June 21st and make a decision accordingly. And the variables that we look at is, as I said, vaccination rates here in Canada, infection rates here in Canada, the situation in Pakistan, the situation in India, and other factors, and based on that on those factors, we will make a decision accordingly. But please forgive me, I don't want to give any information.
You're right.
That could end up being false, so I don't have information yet.
Thank you very much, Umar Al-Ghabra. Now, sometimes we are very observant. I know the Facebook, what's his name, the owner of Facebook, this guy, you know what, I saw his picture. He was sitting in front of his computer, and he put a tape on his camera, and he put a tape on his mic. So I'm looking at your coat. You have something on your coat. Did you cover something, or what is this?
You mean this?
Yeah.
This is actually a green square to honor the victims of the mosque shooting in Quebec that happened on January 29th. And as you may know, Arifa, our government declared January 29th as a day of action against Islamophobia and a day of remembrance for the victims of the Quebec mosque shooting. So I didn't know how else to honor the Afzal family, so I put this on just to commemorate the victims of the Quebec mass shooting, but also to honor the recent horrific murder of the Afzal family.
Very sad, and thank you very kindly. Our departments, our police department, they are phenomenal people. Of course, government has to be very cautious. Once words uttered can never go back, and our Prime Minister, once RCMP got involved, and once RCMP declared it as a terrorist act, our Prime Minister, our opposition leader, and leader of NDP, Janab Jagmeet Singh, they all declared it as a terrorist attack. Sir, thank you very kindly. Anything else that you would like to add?
You know, Arifa, I said this before to you and to the show. I want to thank you. You are providing an important service, public service, to the community. You know, a lot of obviously there's a lot of mainstream media.
You're right.
The community is looking for a credible, reliable source that understands their cultural sensitivities, that speaks in their language, that provides, you know, tries to make sense of the all kinds of information that is out there. Some of it is true, some of it is not true.
You're right.
And shows like yours are really important to help guide the community, to help provide a source of reliable information and to offer comfort, especially during these difficult times. So thank you very much for what you're doing.
Thank you very much. We all want to live in our comfort zones, and South Asian community, they feel more comfortable listening their own language and getting the information in detail. So thank you very kindly. Look forward to talking to you again. Thanks.
Thank you very much, Arifa. Good to see you.
Honorable Minister of Transportation, that is Umar Al-Ghabra, se humne aapki baatcheet karai. Lijiye sahab, do ek sponsors ka paigham. Mega Money Exchange ka zikr karna chahti hu. Agar aapne rakam Pakistan bhijwani hai, please count Mega Money Exchange. Shubhat and Mrs. Shubhat yahan maujood hote hain. Fast hai, friendly hai, reliable hai. Rakam aaj dollar ka rate kya hai Majid bhai? Rakam agar
kal 126.50 tha to aaj wahi hoga.
Kya rate hai? 126.5 rate hai Mega Money Exchange. 905-279-4754-279-4754 उनका नंबर है. हमारे आज के प्रोग्राम को ग्रिल एंड चिक ने भी ताबून दिया. ग्रिल एंड चिक, अगर आपने बड़ा मजेदार खाना खाना है, एंड ऑल ग्रिल्ड, नथिंग ऑयल, नो ऑयल, ऑल ग्रिल्ड फूड अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज 15 माउंट पेरियर ड्राइव पे पहुंचिए ग्रिल एंड चिक के ऊपर. और यहाँ पे आप आपने बर्गर्स खाने हैं, आपने चावल के साथ लेना है. इसकी सॉस बड़ी मज़े की है, चावलों पे सॉस डालें, फ्राइज इनके एक्स्ट्रा डिलिशियस क्रिस्पी, माउथ वाटरिंग. देखें, पानी आ गया मुंह में. और ग्रिल एंड चिक पे तशरीफ लेके जाएं, जरूर जाइए. इन प्रोग्राम को जरूर दावन कीजिए, इन स्पॉन्सर्स को जरूर दावन दीजिए. 15 माउंट पेलियर स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन, 905-2456-0500. हमारे आज के प्रोग्राम को दावन दिया क्विक ट्रक ल्यूब ने भी. अगर आपने, आप हमारे फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं, हमारे ट्रक ड्राइवर्स, उनकी सहूलत के लिए ये क्विक ट्रक ल्यूब ने अपने तमाम हाईवेज के एग्जिट्स के ऊपर अपने सेंटर्स बना लिए. यानी आप वहीं से आप एग्जिट कीजिएगा हाईवे की, उसी एग्जिट के ऊपर ही आप अपने ट्रक की ऑयल चेंज. और वैरायटी ऑफ ऑयल्स यहाँ मौजूद हैं, इंतहाई प्रोफेशनल कस्टमर सर्विस है. तशरीफ लेके जाएं और जस्ट 30 से 45 मिनट्स में दो लोग आपके ट्रक के ऊपर काम करते हैं. एंड बी ऑन द रोड अगेन, QTL के नाम से आप इसको गूगल कर सकते हैं. लीजिए साहब, मेरे एक भाई ने मुझे बल्कि कहा था कि आप चित्राल वगैरह की न्यूज़ को भी शेयर किया करें, मगर मैं आपको पाकिस्तान लेके चलती हूँ. और पाकिस्तान से हमारे साथ होंगे जनाब वसतुल्ला खान साहब, हमारे साथ होंगे. मगर चित्राल गिलगित की मैं एक खबर आपके साथ शेयर करूंगी. कहते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जंगली हयात. आप, उन्होंने मुझे बल्कि कहा था कि सिर्फ पंजाब का जिक्र करते या कराची का, पाकिस्तान नहीं है, पूरा पाकिस्तान में गिलगित भी आता है, बहावलपुर भी आता है, मुख्तलिफ शहर आते हैं, आप तमाम का जिक्र किया कीजिएगा. साहब ये न्यूज जनाब मुझे चित्राल से ही मिलती है, वाइल्ड लाइफ से मुतल्लिक. इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर जंगली हयात, आजादाना माहौल में घूमते फिरते जो स्टूडेंट्स की तहकीक के साथ साथ सियाहों को भी करीब से देखने का मौका मिला. इन्होंने लाइव जो वाइल्ड लाइफ है उसको छोड़ा है, जिसपे स्टूडेंट्स रिसर्च वर्क कर रहे हैं. इसके अलावा सियाह भी, जैसे यहाँ पे ओपन, कौन सा है ओपन, एक जो जू है यहाँ पे कैम्ब्रिज में,
सफारी,
लॉयन सफारी, उसकी तरह से. कहते हैं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर चुलिस्तानी खित्ते में शायद मुल्क का वाहिद जामिया है. बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर हमारे पाकिस्तान का वाहिद जामिया, जहां मुख्तलिफ उलूम पढ़ाने के साथ साथ जंगली हयात के लिए भी कुदरती माहौल फराहम किया गया है. शेख जैद वाइल्ड लाइफ सेंटर में हिरन, ऊंट, मुख्तलिफ परिंदे, दीगर जंगली हयात आजादाना तौर पर घूमते हैं. और लॉयन सफारी की तरह से बहुत से लोग वहां देखते हैं, अपने बच्चे देते हैं, उनकी नस्ल वहां पर बढ़ती है. ये जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, यहां पर वो कहते हैं कि मछलियों को पालने के लिए फिश फार्म भी तामीर किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तरह की मछलियों को बाकायदा पाला जाता है, यानी फार्म है. सबसे ज्यादा दिलचस्पी जंगली हयात, जो बिल्कुल यूं घूमते फिरते हैं जैसे कुदरती जंगल हो. अगेन जस्ट कंपेयर इट विद लॉयन सफारी. और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जंगली हयात के लिए बनाए गए जंगल का दौरा भी कर सकते हैं. अगर आप आइंदा पाकिस्तान जाइए तो जरूर दौरा कीजिएगा. यानी हिरन नहायत आजादी से उछल कूद कर دوڑتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے. آف کورس سیاحوں کی توجہ کا یہ جگہ مرکز ہے. جامعہ بہاولپور کے وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب نے کہا ہے کہ چولستانی خطے میں جنگلی حیات کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ وہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر بھی جنگلی حیات کو تحفظ فراہم کریں گے. آئی ول ڈیفینیٹلی شیئر سم آف دا پکچرز ود یو بٹ اسٹے ود می. بہت شکریہ. ہم آپ کو لے کر کے چلیں گے پاکستان, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے جناب وسط اللہ خان صاحب. ہمارے اس سیگمنٹ کو تعمیر دیا چلی کیکس نے. چلی کیکس کہتے ہیں کہ فیٹ لیس ایز اس کے برگرز, یعنی آپ اس کا جو چکن کا سکن ہوتی ہے اس کو اتار دیا جاتا ہے. چلی کیکس, کرسپی چکن, چکن ٹینڈرز, پیسٹا, ہول چکن اور چیز کیک اور فالودہ بعد میں مٹھائی کے طور پر کھائیے گا. آپ پہنچیے کہاں پہ, چلی کیکس پہ, اور یہ مسساگا میں ڈکسی اینڈ ڈیری کا انٹرسیکشن ہے. آپ وزٹ کر لیجئے 416-444-2267. یعنی مزے کا کھانا کھائیں, اس کے بعد آپ پھر یا فالودہ کھائیے گا اور دل کرے تو چیز کیک کھائیے گا, اور اس کے بعد پھر چلتے ہوئے گھر کو جائیے گا, بیکاز یو ہیو ٹو برن یور کیلوریز. 416-444-2267. لیٹس گو ٹو پاکستان. پلیز فاسن یور سیٹ بیلٹس, کیونکہ فلائٹ بمپی بھی ہو سکتی ہے. جناب وسط اللہ خان ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام. اور یہ جو وینکوور میں واقعہ ہوا ہے لندن میں,
سر یہ ٹورنٹو اونٹیریو
میں, لندن قصبے میں. تو ظاہر ہے کہ پہلے تو آپ لوگوں سے وہ دکھ, آپ لوگ بھی شوق میں ہوں گے,
بالکل سر,
شیئر کرنا چاہتا ہوں. لیکن مجھے امید یہ ہے کہ جب 2017 میں مونٹریال میں اسی طرح مسجد پہ اٹیک ہوا تھا, تو 2 سال کے اندر ہی اس مقدمے کا فیصلہ ہو گیا تھا اور اسے 40 سال قید کی سزا ہو گئی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو کینیڈین نظام انصاف ہے اس معاملے میں بھی تیزی سے آگے بڑھے گا, اور اس سے پہلے کہ یہ آکاس بیل سماج کو لپیٹ میں لے لے, ہم تو بھگت رہے ہیں, تو اس سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ اس کا تدارک ہو سکے گا.
سر سب سے خوبصورت بات اس ملک کی ہے کہ یہاں کی عدلیہ آزاد ہے. جیسا آپ نے کہا کہ اگر وینکوور کا فیصلہ, اگر کیوبیک کا فیصلہ ہو گیا تھا اور اس شخص کو عمر قید بھی ہوئی, ہمارے پرائم منسٹر نے ابھی, بلکہ ہمارے آنریبل منسٹر آف ٹرانسپورٹ عمر الغبرہ ہمارے ساتھ تھے, جنوری میں اس کی یادداشت کا ایک دن بھی منایا, اعلان کر دیا گیا ہے. اور آج پرائم منسٹر نے یہاں کے جو سیاست دان ہیں اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں, وہ یہ نہیں کہ جو بات منہ میں آئی اور کہہ دی, مگر جب آج آر سی ایم پی نے اناؤنس کر دیا کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک تھا, اس کو اس زمرے میں لے کے آ رہے ہیں, تو آج پرائم منسٹر نے بھی اس کو ٹیررسٹ اٹیک کا کہہ دیا, لیڈر آف اپوزیشن نے بھی کہہ دیا, اور یقیناً ہمارے جو این ڈی پی کے لیڈر جگمیت ہیں انہوں نے بھی اس کو ٹیررسٹ,
اور آج شام کو سارے کے سارے ویجل میں ہوں گے,
اور یہ تمام لوگ ہمارے پرائم منسٹر بھی ہوں گے,
پرائم منسٹر ہوں گے, ہمارے پریمیئر ہوں گے, ہمارے میئرز ہوں گے وہاں پر, اپوزیشن کے تینوں لیڈرز وہاں پر ہوں گے, تو سارے کے سارے
ہمارے جو میئر آف ہمارے اونٹیریو کے میئر ہیں ڈگ فورٹ, انہوں نے بھی یقین پریمیئر, میں کہتی ہوں ہر انسان,
ہم یہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں جس طرح لوکل لوگ جس طرح محبت کا اور دکھ کا اظہار کر رہے ہیں, وہاں پھول رکھ رہے ہیں اور شوق میں ہیں, تو وہ خاصی
باعث. مسعود اللہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فاصلے بڑھانے میں لمحہ نہیں لگتا, مگر فاصلے کم کرنے میں عمریں گزر جاتی ہیں. یہاں پہ ہماری, چاہے وہ گورنمنٹ کے عہدیدار ہیں, آج پرائم منسٹر اور تمام اپوزیشن کے لوگ اور تمام لوگ اس موقع پہ پہنچ رہے ہیں, وہاں پر موجود ہوں گے, سب کا ہارٹ گوز وتھ اٹ, بٹ انفارچونیٹلی برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہماری گورنمنٹ نے, بہت شکریہ ان کا.
عرفہ جی میں بس کیونکہ آئی واز ویری اموشنل ایٹ دیٹ ٹائم ٹو. سر خان صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر لندن کے جو میئر ہیں نا ایڈ ہولڈر, آپ ان کا بیان سنیے گا جب وہ ٹی وی پہ بیان دے رہے تھے اپنا, واقعی میں وہ ہی کڈن اسٹاپ کرائنگ, ان کو پتا لگتا
انڈرسٹینڈ, اس لیے کہ یہاں پہ پوری فیڈ آ رہی ہے اور ہم بالکل برابر اس پہ جو ری ایکشن آ رہا ہے उस पर देख भी रहे हैं और कुछ सीख भी रहे हैं और एक अच्छी डेवलपमेंट पहली बार मुझे नजर आ रही है कम से कम नॉर्थ अमेरिका की हद तक कि अब तक इस तरह के जितने भी अटैक होते रहे हैं उसमें तासुर ये मिलता था कि दे आर लोन वुल्व्स, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उन्होंने अपने तौर पर डील किया। लेकिन पहली बार मुझे उम्मीद हो रही है कि इस केस के तनाजुर में, इस केस के हवाले से हुकूमत जिन खतूत पे तहकीकात कर रही है उसमें लोन वुल्फ का तस्वीर जो है उन्होंने पीछे फेंक दिया है और अब वो इस तलाश में है कि कौन सा नेटवर्क है जो बाहर ऑपरेट भी नहीं कर रहा लेकिन बहरहाल ब्रेन वॉशिंग तो कर रहा है ना थ्रू इंटरनेट थ्रू अदर सोर्सेज। तो अगर उनके पीछे चले गए हैं तो मेरा ख्याल है उम्मीद है कि वो जड़ तक चले जाएंगे, इसलिए कि ये अकेले आदमी का काम हर बार होता नहीं है।
बहुत शुक्रिया सर आपका, और ये सिस्टम बहुत खूबसूरत है। मैं सबसे ज़्यादा कहती हूँ अल्लाह करे पाकिस्तान के बेशुमार पॉलिटिशियन बोलते बहुत खूबसूरत हैं, अपनी तालीम के लिए बैरून ममालिक जाते हैं, खुदा करे कि हमारे पॉलिटिशियन इस चीज़ से कुछ सीख ज़रूर सकें और हमारा भी अदलिया का निज़ाम इतना स्ट्रांग ज़रूर हो जाए। जहाँ तक मेंटल केस की बात है तो साहब ये तो वकील की परवरिश ऐसे है कि वकील ने के पास चोर ने भी जाना है और वकील के पास साध ने भी जाना है, उसने केस को कैसे प्रेजेंट करना है। मगर गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज जरूर किया, मगर माय हार्ट गोज विद द चाइल्ड, बहसियत मुसलमान मौत बरहक है इनकी शहादत की मौत, मगर उस बच्चे का आई फील सैड कि अभी तो सिर्फ 9 साल का है और 16 साल की उम्र तक वो ना तो किसी बैंक अकाउंट को हाथ लगा सकता है ना वो अपनी कैश डीलिंग कर सकता है, वो डिपेंडेंट है। मुझे सिर्फ अगर गम है और मुझे फिक्र है तो मुझे उस बच्चे का फिक्र ज़रूर है क्योंकि 16 साल की उम्र तक अंडर कस्टडी होगा वो बच्चा, मगर उसके पास माँ नहीं होगी और उसके पास बाप नहीं होगा। खुदा करे आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूर की जाए। जब इसका मैं जिक्र कर रही हूँ तो सर मैं कल पाकिस्तान में भी जो वाक़या हुआ ट्रेन के हादसे का, थोड़े उसके बारे में अपडेट कीजिएगा। अगर गवर्नमेंट को मालूम था कि ये ट्रेन ट्रैक्स ख़राब हैं और जस्ट ब्लेमिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट्स के जी ट्रैक्स ख़राब थे, अगर आपके नोटिस में आ गए थे तो आपने ठीक करा लेने थे, तो उस पर क्या पेशरफ्त हुई?
देखिए एक इस तरह के जो हादसात हैं उसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो कोई भी हुकूमत हो वो अपना लेती है कि एक तो सबसे पहले मरने वालों की रूहों को इसाले सवाब पहुंचाया जाता है, फिर उनके वर्षा से हमदर्दी की जाती है, फिर ये ऐलान किया जाता है कि हम कंपनसेशन देंगे 3.5 लाख 4 लाख जो भी 5 लाख जो भी है, और उसके बाद दुआ करके मामला ख़त्म हो जाता है अगले हादसे तक। एक स्टैंडर्ड SOP है, इसमें भी जाहिर है कि ये हुआ है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि 65 की तस्दीक हो चुकी है कि 65 अफराद जो हैं वो जान बहक हुए इस हादसे में। अच्छा ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट पे तो ठीक है कि डाल दिया, लेकिन मसला ये है कि ये जो 250 किलोमीटर का टुकड़ा है सखर रेलवे डिवीजन का जो कि रोड़ी से शुरू होकर खानपुर तक ख़त्म होता है, इसको खुद रेलवे वाले भी डेथ ट्रैक कहते हैं। जो इब्तदाई तहकीकी रिपोर्ट आई है वो खासी होश उड़ा देने वाली है कि ये जो 250 किलोमीटर का टुकड़ा है इसमें 6000 पॉइंट्स पे रेलवे ट्रैकिंग ट्रैक की वेल्डिंग की गई है, और ये जो हादसे की फौरी वजह है वो ये समझ में आ रही है कि एक जगह जो वेल्डिंग का सिलसिला था वो टूट गया तो जिसकी वजह से तकरीबन 3 फुट का गैप आ गया था पटरी में, और फिर वो जाहिर है कि डीरेल एक ट्रेन हुई तो उसके बाद दूसरी भी दूसरी से टकरा गई। मैं जाती तौर पे चूंकि उस इलाके से हूं इसलिए मैं जानता हूं 1969 से आज तक पाकिस्तान के जितने भी ऐसे हादसात हुए हैं जिनमें सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ है वो इसी 250 किलोमीटर के टुकड़े में हुए हैं। ये 69 से प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा नहीं कि नवाज शरीफ के ज़माने से या बेनज़ीर के ज़माने से या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से, उससे पहले से ही प्रॉब्लम मौजूद है। इसका मतलब है कि 52 साल से हर हुकूमत को मालूम है कि ये जो ट्रैक है इसकी क्या कंडीशन है। तो अब मैं इसे क्या कहूँ, किसी एक हुकूमत पे ब्लेम करूँ या क्या करूँ। हुआ यह है कि जो पिछले चेयरमैन थे रेलवे के, उन्होंने 2019 में ये कहा था कि 23,000 के लगभग टेक्निकल स्टाफ की कमी है हेल्थ एंड सेफ्टी और देखभाल से मुतालिक, उसके बदले में जो 10,000 लोग भर्ती हुए वो पर्ची पे और सियासी वफादारियों के अवैध जो है वो भर्ती हुए। अब जाहिर है कि जब वो पर्ची पे भर्ती हुए हैं वो टेक्निकल लोग नहीं हो सकते और इस तरह की सूरत हाल आती है। ये सबको पता है कि ये बला कोई अल्लाह ताला ने ये आसमान से नहीं उतरी है, ये हमने खुद अपने सरों पे तोड़ी है। उसके बावजूद आज जो वजीर रेलवे थे, जब उनसे ये पूछा गया कि भाई साहब कुछ तुफूक हो रहा है, तो कहने लगे देखें बात ये है कि अगर मरने वाले जिंदा हो जाए तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ।
वेरी सैड, व्हाट एन इररिस्पांसिबल।
अच्छा, इररिस्पांसिबल मेरा ख्याल है हल्का लफ्ज अब इस्तेमाल कर रही है ब्रॉडकास्टिंग की वजह से, शायद कुछ और कहना चाहिए। दूसरे ये है कि पिछले 20 साल के अंदर, बल्कि मैं कहूंगा 30 साल के अंदर, 30 साल से पहले रेलवे एक कमाऊ कूद था, अपने पैरों पे खुद खड़ा था। लेकिन फिर हुआ ये कि जो ट्रांसपोर्ट माफिया, सियासी भर्तियां, करप्शन, कमीशन, स्क्रैप के नाम पे अच्छी वाली मशीनरी को कोड़ियों के मोल बेच देना, इसमें इस जुर्म में हर हुकूमत शरीक रही है। और उन्होंने रेलवे को, रेलवे वो लुटा हुआ रही ज्यादा है कि जिसकी कहानी बहुत शानदार है, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई पाई पल्ले और वो बाप के होते हुए यतीम हो चुका है। सबसे जो कैलस इसमें बयान आया है वो मौजूदा जो चेयरमैन रेलवे हैं, उनसे पूछा कि जी ये आप ट्रैक ठीक क्यों नहीं करते जब आपको भी पता है, तो उन्होंने कहा जी कि चाइना की मदद से हम जो कराची से पिशावर तक ML1 की रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, तो ज्यादातर खर्चा हमारा, ज्यादातर वसायल उस पे लग रहे हैं, तो अगर हम इसकी रिपेयरिंग पे पैसे लगा दें तो हमारे, एक तो इसकी रिपेयरिंग जो है वो कुछ सालों के लिए होगी इसलिए हम रुके हुए हैं, दूसरे जब ML1 बन ही रहा है तो रिपेयरिंग की क्या जरूरत है, यानी इंसानी जान तो कहीं है ही नहीं ना। अच्छा, वो ML1 जो है वो भी 2028-29 में जाके तैयार होगा, 2021 से लेके 28-29 तक जो हादसात होंगे उनमें जो जानी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। वो चेयरमैन रेलवे कह रहे हैं जी खर्चा बड़ा है तो हमने इसलिए नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ प्रायोरिटीज जान नहीं है, प्रायोरिटीज कुछ और है।
अस्तग़फ़र, वेरी सैड सर। पाकिस्तान की रेलें, ट्रेन जो हैं वो खचा खच भरी हुई होती हैं। जब मैं पाकिस्तान में थी तब भी हमारी, मुझे भी एक दो एक्सीडेंट्स याद हैं, तो हम हमेशा ये कहा करते थे कि मैंने जब भी ट्रेन देखी खचाखच भरी हुई देखी। कैसे हो सकता है कि इतना बदतरीन एक्सीडेंट हो जिसमें बोगियां ऊपर तले होके रह जाएं, डी ट्रैक हो जाएं, मतलब इतने मोमेंटम के साथ ट्रेन टकराने के बाद तो डेथ सिर्फ 43 से 63 हों? हाउ इट इज पॉसिबल? दिस मीन दे आर नॉट ट्रूइंग द एक्चुअल नंबर्स।
नहीं, मतलब आप क्या समझ रही हैं कि ज्यादा लोग मरे हैं, कम बताए जा रहे हैं, क्या
मेरा यही ख्याल है?
नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, आजकल के जमाने में नहीं है। पिछला जो हादसा हुआ था इसी ट्रैक पे हुआ था, इसी डेथ ट्रैक पे, जिसमें के 4 बोगियों में आतिशजदगी हुई थी। कोई साहब जो है वो चलती ट्रेन में, या तो शॉर्ट सर्किट हुआ था, वो आज तक नहीं पता। आज तक जो भी हादसा हुआ उसकी तहकीकाती रिपोर्ट पूरी तरह सामने ही नहीं आती। तो लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि पिछला जो हादसा हुआ था जिसमें हमारे शेख रशीद साहब वजीरे रेलवे थे, और वो पिछले साल की ही बात है, तो उसमें कहा गया कि जी कोई मुसाफिर था, वो सुबह का नाश्ता तैयार कर रहा था बोगी में, तो उससे आग लग गई। एक वर्जन ये था कि जी शॉर्ट सर्किट हुआ बोगी में, उससे आग लग गई, तो उसमें 75 के करीब लोग मरे थे। अच्छा, कई बेसिकली सिग्नलिंग का जो सिस्टम है वो आज तक इन लोगों से संभला ही नहीं। मसलन लाइट ग्रीन है, कांटा जो है वो मेन लाइन की बजाय साइड लाइन का बदल गया। अब जो ट्रेन आ रही है उसे तो नहीं पता, वो तो ऑटोमेटिकली साइड लाइन पे चली जाएगी। साइड लाइन पे मालगाड़ी खड़ी है, उनके दरमियान तसादुम हुआ और उसके बाद डब्बे उलट गए। ये कई हादसात में ये बात हो चुकी है, लेकिन सिग्नलिंग सिस्टम पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मेरा ख्याल है कि
2005 میں ایک ایسا حادثہ ہوا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا حادثہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی دو ٹرینیں تو آپس میں ٹکرا سکتی ہیں, تین ٹرینیں ٹکرائی ہیں اس حادثے میں اسی ٹریک پہ. ایک ٹرین سگنلنگ کی خرابی کی وجہ سے دوسرے کے پیچھے جا کے اس میں گھس گئی, اور جو آگے سے ٹرین آ رہی تھی اس کو بھی روکنے کا اشارہ نہیں ملا, تو وہ جو بکھر چکے تھے ڈبے ان دونوں ٹرینوں کے, ان سے ٹکرا کے وہ بھی الٹ گئی. یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ کسی حادثے سے جو ہے وہ سبق نہیں لیا گیا. جو میکسیمم حادثہ بڑا ہوا تھا اس میں 350 کے لگ بھگ لوگ مر گئے تھے, 100 مر گئے, 200 مر گئے, کچھ اس کا تو ذکر نہیں ہے. لیکن اتنی دفعہ یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں, اس کے بعد بھی جو روایتی بیانات ہیں ان کے ذریعے زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور چونکہ لوگوں کو اپنے حقوق کا اس طرح سے جو ایک کنزیومر کو شعور ہوتا ہے
ادراک نہیں ہے, ممالک میں
نہیں ہے, تو وہیں غتر بود ہو جاتا ہے کس سسٹم سے اس چیز کو ایڈریس کریں, کہاں کریں. جو کورٹس ہیں انہیں ہیڈ لائنز اور ٹکر جو ہیں ان سے فرصت نہیں ہے, تو وہ اس طرح کے مسائل پہ سو موٹو ایکشن بھی نہیں لے.
سر میرا آپ سے دو کوئکلی سوال ہوں گے, ہم آگے جلدی سے پروگرام کو ریپ اپ کریں گے. ایک تو میرا یہ ہوگا کہ جتنے بھی آپ کے اس وقت گزرا ہیں تمام کے تمام بھانت بھانت کا پانی پی کے اس کمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے آپ شیخ رشید صاحب کی بات کر لیں, چاہے آپ فواد چودھری کی بات کر لیں, سرور صاحب کی بات کر لیں, جس کی بھی آپ نے بات کرنا ہے آپ کریں. مگر جب وہ کہتے ہیں پچھلی حکومتیں, تو آپ جیسے جرنلسٹ کیا ان سے سوال نہیں کرتے کہ پچھلی حکومت میں کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ آپ ہی تو تھے, آپ نے کبھی ان سے یہ سوال کیا؟
دیکھیں ان کی کھال ہو چکی ہے گینڈے کی, آپ ان سے کچھ بھی کہہ لیں, ان سے کچھ بھی پوچھ لیں, انہوں نے وہی جواب دینا ہے جو ہے. اس لیے کہ استعفیٰ انہیں نہیں دینا, شرمندہ انہوں نے نہیں ہونا, سیاست سے کنارہ کشی کا انہوں نے اعلان نہیں کرنا, جو آپ لوگوں کی عام بات ہے. تو جب کھال اتنی موٹی ہو جائے تو اس کے بعد جو مرضی آپ سوال پوچھ لیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور ویسے بھی یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی تھرڈ میجورٹی تو نہیں ہے, یہ تو اتحادیوں کی مدد سے اور کچھ ووٹ ہیں, کوئی 10-15 ووٹ ہیں ان کی وجہ سے یہ ٹکی ہوئی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ دیکھیں, ان کی ناراضگی اور خوشی دیکھیں, یا ان کا احتساب کریں. پی آئی اے کے ساتھ یہ جو ایویشن کے منسٹر ہیں غلام سرور عوان صاحب, انہوں نے پی آئی اے کے پائلٹوں کے ساتھ جو کیا اور اس کے نتیجے میں پی آئی اے کے ساتھ پوری دنیا میں جو ہوا, اس کے باوجود وہ ٹکے ہوئے ہیں.
حالانکہ وہ پچھلی حکومتوں سے بھی بھانت بھانت کا پانی پی کے آئے ہوئے ہیں.
نہیں نہیں وہ تو سب پی ایم ہیں, تو میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ کھال اتنی موٹی ہو چکی ہے کہ آپ کچھ بھی دے کہہ دیں, گالی دے دیں, تانا دے دیں, کوسنا دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. صورتحال جو ہے بے حسی کی اس منزل پہ پہنچ چکی ہے. تو یہ جو ہے اب اس پہ ہنسی آتی ہے کہ جب ظاہر ہے کہ آپ لوگ واقف نہیں ہیں یہاں کے سسٹم سے, آپ دور ہیں, اب تو اس طرح کے سوالات پہ ہنسی آتی ہے کہ بھائی ان سے آپ سوال کیوں نہیں پوچھتے. سوال پوچھنے سے بہت آگے کی منزل میں ہیں یہ لوگ.
سر قوم کیوں نہیں جاگتی؟ وہ کسی نے ایک جوک شیئر کیا نا, اس نے کہا کہ پاکستان میں لیڈر نے کہا کہ ساری کی ساری قوم کو اور ایک گدے کو جیل میں بند کر دو, تو ان کو قوم کا تو فکر نہیں آیا. سوال پوچھنے والے نے پوچھا ہیں گدے کو کیوں جیل میں بند کر دیا جائے, تو کیا قوم بھی آنسریبل نہیں کرتی؟ کیوں ووٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو دوبارہ؟
پھر کسے دیں؟ ایک کم وہ ہے, میں نام وہ نہیں لینا چاہتا, ایک کم وہ ہے اور ایک زیادہ وہ ہے, دونوں میں سے انتخاب ہے, تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں.
سر میرا آج آپ کی نوٹس سے خبر گزری ہوگی کہ صدر فرانس, یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے پچھلے 2 مہینے میں, ایک اور جس نے خاکے بنائے تھے اس کو بھی ایک آدمی نے آگے بڑھ کے, مسلمان ہے کوئی پاکستانی, اسے تھپڑ جڑ دیا تھا. آج کا جو یہ واقعہ ہوا ہے کہ فرانس کے صدر میخواں وہ بیچارے دورے کے اوپر نکلے ہوئے ہیں, اور یہ دیکھیے, اور اس کو جب ہائی لائٹ کیا, آپ اس کو دوبارہ دیکھیں تو उन्होंने इसको साउथ एशियन समझा और देखिए उन्होंने दोनों हाथ जोड़े हैं इसको करने के लिए, उस बंदे की तरफ गए, उसने थप्पड़ जड़ दिया. मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, यानी आपकी नोटों से गुजरा, इस पे कोई तबसरा करना चाहेंगे आप?
नहीं, मैं सिर्फ वीडियो पे तबसरा करना चाहूंगा. जो इस वक्त आपके यहाँ चल रही है, वो बंदा जो है जिसने थप्पड़ मारा है उसने ढीले हाथ से मारा है, तो चोट बहुत लगी है इन्हें. जिसे कहते ना छठवा मारा है ढीले हाथ नाल,
बहुत छडवा मारा है. और मगर सारी की सारी सिक्योरिटी है, इस बंदे को अरेस्ट कर लिया. अभी इसका नाम भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे. नो सूनर आई गेट द इन्फॉर्मेशन आई विल शेयर दैट इन्फॉर्मेशन. सर, इसके अलावा आप कुछ और फरमाना चाहेंगे? आज एक और बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज जो है वो अमेरिका ने 2018 में पाकिस्तान की आर्मी को निकाल दिया था अपनी ट्रेनिंग के हवाले से, मगर आज अमेरिका ने दोबारा उसको शामिल कर लिया है. मगर पाकिस्तान की आर्मी ने सवाए जनरल मेजर जनरल असद दुरानी के किसी ने भी इसको एनकरेज नहीं किया. ये जो एक ट्रेनिंग होती थी जिसमें पूरी दुनिया के फौजी अफसर जाया करते होते थे और अमेरिका में वो 6-6 महीने का कैंप रिसीव करते थे, और 2020 में इसको दोबारा शुरू किया. कुछ इस पर आप राय देना चाहेंगे? आई विल कवर दिस न्यूज दो लेटर ऑन.
अभी जो है इख्तलाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिस्टोर होने पे नहीं है, वो तो अच्छी बात है. ये जाते थे ब्रिगेडियर लेवल के कर्नल लेवल के फौजी अफसर, वहाँ फोर्ट ब्रैक्स में ट्रेनिंग होती थी, तो ये तो एक अच्छी बात है कि वो रिस्टोर हो गई है. जो असल जो डेडलॉक है वो ये है कि अड्डे दिए जाएं या नहीं दिए जाएं. इसमें जो है एस्टेब्लिशमेंट और जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. फिर अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आपकी नजर से भी जाहिर है डेफिनेटली गुजरी होगी कि CIA के डायरेक्टर ने वहां का दौरा किया और
उसने कहा अड्डे दे दिए,
बातचीत की. तो इख्तलाफ ये नहीं है कि अड्डे देने या नहीं देने, मसला जो है वो बार्गेनिंग पे है कि हम देंगे तो आप क्या देंगे, या क्या सेफ गार्ड्स होंगे और कितना कंट्रोल होगा कितना नहीं होगा. तो इन पे जो है वो चीज हो रही है. अगर जिस दिन फैसला हो गया जी अड्डा देना है तो उसके हक में बहुत सारे दलायल हो जाएंगे, अगर नहीं देना तो उसके हक में भी बहुत सारे दलायल होंगे. तो अभी नाप तोल के आशारी निजाम के तहत ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचे.
मगर आर्मी तो मुकम्मल तौर पे डिनाई कर रही है कि हम अड्डे नहीं देंगे.
देखिए, जब तक फैसला नहीं हो जाता ना उस वक्त तक अकलमंदाना बात ये होती है कि आप डिनाई करते रहें,
खामोश रहें.
और ये सिर्फ रियासत नहीं करती, लड़का लड़की भी करते हैं. आप कहते हैं जी वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हालांकि सबको पता होता है यू आर नॉट जस्ट फ्रेंड्स, मगर डिनाय तो करते हैं ना जब तक के वो आके अलग ऐलान नहीं करते. तो लोगों से ही तो रियासत बनती है ना, हम ही लोगों से ही तो रियासत भी बनती है.
अच्छा, मैंने ये देखा है जब आपने प्रोग्राम का इख्तिताम करना होता है ना तो आप ऐसा कोई फुलझड़ी उड़ा देते हैं. और
अब आप मैं इंतजार कर रहा हूं कि अब आप ये सवाल मुझसे करें, आज आप इतने उलझे हुए चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं, झगड़ा क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल कब करेंगे?
नहीं, आज आपने दूसरी बार फुलझड़ी छेड़ी है तो ताकि मैं खुदा हाफिज कर दूंगा आपको.
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. देखें दुनिया में आपको खुश करना कितना मुश्किल है काम है. कभी मैं अगर सीरियस मुंह बना लूं तो जी सीरियस मुंह क्यों बनाया, अगर मैं खुशगवार अंदाज में बात करूं तो फुलझड़ी क्यों छोड़ी. अच्छा, एक दफा नहीं दो दफा बाकायदा आप काउंटिंग भी रखती हैं कि जी दूसरी दफा ये फुलझड़ी छोड़ी, मुझे तो याद भी नहीं होता. और अगर मैं कुछ ना कहूं तो आप कहते हैं जी अच्छा इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं, मैनू दस दियो मैनू करना की है.
मुसद्दला खान साहब, एक बात बताऊं, आप बड़े लकी हैं कि आप हफ्ते में एक दिन इनके साथ होते हैं 20-25 मिनट के लिए. हुजूर वाला हमसे पूछिए जो हम सुबह शाम इनके साथ होते हैं तो हमारा क्या हशर होगा. मैं जब इधर आया था 770 में 2001 के करीब, तो वो मैं 6'5" का था और 225 पाउंड का था. अब साहब मुझसे पूछिए नहीं, मैं 5'6" का रह गया हूँ और 150 पाउंड का रह गया.
सर, बताने की जरूरत ही नहीं है, आपके चेहरे पे सारी दास्तान लिखी है.
मेरी कल नदीम कामरान साहब से बात हुई, ही विल बी ऑन आवर शो एज वेल. سنا ہے کہ آپ کے شہباز شریف صاحب انگلینڈ جا رہے تھے, گورنمنٹ نے ان کو روک لیا, وہ ڈائریکٹ نواز شریف صاحب سے رابطہ ہو گیا, تو کوئی ٹھنڈا پڑ گیا معاملہ سیاستدانوں کا, کوئی کوئکلی اس کے بارے میں رائے دیتے جائیے گا.
ٹھنڈا کبھی نہیں پڑتا سیاستدانوں کا معاملہ, سامنے اگر خبر نہیں آتی تو ڈرائنگ روم کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, رابطے ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا چلتا, لیکن معاملہ چلتا نہیں ہے. یہ مشین ایک دفعہ جو آن ہو جائے نا تو یہ پھر رکتی نہیں ہے, اس کا شور کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے اور خبریں غالب آ جاتی ہیں فار دا ٹائم بینگ, لیکن اس طرح کے معاملات رکتے نہیں ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں.
سر آپ انویسٹیگیٹرز بن جائے نا, کیمرہ لے کے پیچھے پیچھے پھرا کریں. بہت شکریہ سر, پاکستان زندہ باد.
آپ نے آخر میں کچھ کہہ دیا ان کو, وہ سوچ رہے ہیں کیا جواب میں کیسے دوں.
انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بن جائیں نا, کیمرہ لے کے پیپروزیز کی طرح ان کے پیچھے پیچھے پھرا کریں اور پھر دیکھیں.